शरीर का मांस काट के दिया बाज को, और अपने कुल के नाम और यश को फैलाएगा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के समान। दुष्यंत के पुत्र भरत के समान, जिनके वंश में ये पांडव हैं, उनके नाम से भारत कहे जाते हैं भारत। एष दाता शरण्यश्चाम यथा योशी नरः शिभिः यशो वितनिता स्वामनाम दोषंती रेव यज्वनाम। और धनुर्धर में, धनुष धारण करने में ये बालक अर्जुन के समान होगा, और अग्नि के समान बेरोक होगा। अग्नि को कोई रोक नहीं सकता है, अग्नि जब आगे बढ़ता है तो कोई रोक नहीं पाता है, तो अग्नि के समान बेरोक होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, और समुद्र की भांति दुर्लंघ होगा। समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल है, तो समुद्र के समान इसको पार करना मुश्किल है। धन्विनाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुन और द्वयो होता से दुर्धर्षः समुद्र एव दुस्तरः। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, और क्षमा में किसके समान है? पृथ्वी के समान क्षमा करती, पृथ्वी क्षमा करती है। कितने अपराध करते हैं हम लोग, अपने पैर रखते हैं, खोदते हैं जमीन को, पृथ्वी क्षमा करती है। क्षमा के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, और सहिष्णु सहनशीलता में किसके समान? माता पिता के समान। सहनशीलता में माता पिता के समान होगा। मृगेंद्र एव विक्रांतो निशेव्यो हिमवान इव तितिक्षुर वसुधे वासो सहिष्णु पितरा विव। और फिर ये बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा, समता। और दानशीलता में कैलाशपति शिव के समान होगा, और आश्रय देने में भगवान नारायण के समान, जो लक्ष्मी को आश्रय देते हैं उनके समान है। पितामह समहा साम्येम प्रसादे गिरिशोपमह आश्रय सर्वभूतानाम यथा देवो रमाश्रयः। फिर और क्या कहते हैं? ये बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में ये राजा रंधदेव के समान तथा धर्म में यह महाराज याति की भांति होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णम अनुव्रतः रंधदेव एवोदारो याति रेव धार्मिकः। और धैर्य में किसके समान है? महाराज बलि के समान। बलि के अंदर कितना धैर्य था, वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया, छीन लिया, तीन पग जमीन के बहाने, धैर्य से बलि ने जो है ना सब असुरों को रोका कि नहीं युद्ध ना करो, धैर्य, धैर्य में बलि के समान। और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त होगा, और अनेक अश्वमेध योगों को, अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला ये होगा, और वृद्धों का अनुयायी होगा, वृद्धों की सेवा करने वाला होगा। धृत्या बलि समहा कृष्णे प्रहराद एव संग्रह आहर्त सो स्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासक। ये बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के लिए यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। राजर्षीणाम जनिताम शास्ता चोत्पथगामिनाम निग्रहित कलेरेश भवो धर्मस्य कारणाम। कलयुग को भी ये निग्रह करेगा, कलयुग को बस में करेगा ये बालक। फिर आगे पूरी घटना भी बता दी, कि अंतिम घटना भी बताते हैं ब्राह्मण लोग क्या होगा आगे। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। पूरी भविष्यवाणी कर दी ब्राह्मणों ने आगे तक की, मतलब कोई ये झूठ बोलने वाले थोड़ी है ब्राह्मण कि फालतू की प्रशंसा करें, ये कोई ऐसी नहीं है कि बस बातों से प्रशंसा कर दी खुश करने के लिए, ये ऐसे ब्राह्मण नहीं है, है ना। पूरी घटना बताते हैं। तक्षक आदात्मनो मृत्युम तुझे पुत्रोपसर्जितान प्रपत्स्यते अपश्रुत्य मुक्त संगः पदम हरे। व्यास देव के परम दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा, ये भी निश्चित पहले से हो गया है। क्या पहले से भी निश्चित हो गया है? हाँ वो भी है, लेकिन और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा श्रीमद् भागवत श्रवण करेगा ये भी पहले से निश्चित हो चुका है, जन्म के पहले ही निश्चित हो चुका है कि श्रीमद् भागवत जो है ना ये श्रवण करेंगे सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। जिज्ञासितम जिज्ञासितात्म यथार्थ्यो मुनेर व्यास सुतादसो हित्वेदम नृपे गंगायाम या सत्यद्धा कुतो भयम्। तो इस तरह से जो है परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन हुआ, पहले से ही इनके जन्म के समय में ही इनकी पूरी भविष्यवाणी हुई थी। तो ऐसे परीक्षित महाराज के गुणों की चर्चा हमने की है। अब किसी का कोई प्रश्न है या कोई समीक्षा है आपका? इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है, हाँ इनका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि इतने गुणवान हैं परीक्षित महाराज, तो उनसे ऐसा अपराध कैसे हो गया कि एक ब्राह्मण के गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया? ये बड़ा अपराध नहीं था, ये अपराध बड़ा नहीं था, ये छोटा सा अपराध था अगर देखा जाए तो। मतलब ये इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, परीक्षित महाराज के ऐसे अपराध पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और समीक मुनि ने तुरंत ही जो ना जब सुना कि ऐसा हुआ तो उन्होंने अपना अपराध माना, राजा का तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया कि वो पूरी पृथ्वी के सम्राट और फिर अतिथि के रूप में आए, उनको पानी नहीं मिला, है ना, उनका कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ, उनको कोई किसी ने बैठाया नहीं, आसन नहीं दिया, उनको जो है ना पानी भी नहीं पिलाया और बातों से भी उनका कोई सत्कार नहीं हुआ। कितना जो है ना ये हमने अपराध किया है। समीक ऋषि अपने अपराध को मान रहे हैं और राजा के अपराध को छोटा मान रहे हैं, कुछ भी अपराध नहीं है। और राजा का वैसे अपराध नहीं था, क्योंकि राजा का ही कर्तव्य है ये देखना, परीक्षा करना कि कौन व्यक्ति सचमुच जो है ना धार्मिक है या धर्म का ढोंग कर रहा है। जो धर्म का ढोंग करते दिखाने के लिए, तो ऐसे बहुत लोग देखे जाते हैं, एकांत में भजन करते हैं, जब देखते हैं कोई व्यक्ति आ रहा है ना, तो वो देखते हैं कि देखो ये देख रहा है कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं, ऐसा होता है। एकांत भजन तो वैसे मना किया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कहते हैं बहुत ढोंग है एकांत में जो ना भजन करने के लिए, है ना, लोग जाते हैं भक्तों का संग नहीं करते, है ना, तो ऐसा ध्यान होता नहीं वास्तव में, लेकिन वो कुछ भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उनका ध्यान इतना प्रगाढ़ था कि वो परीक्षित महाराज की बात को नहीं सुन सके सचमुच। लेकिन परीक्षित महाराज का कर्तव्य था ये जानना कि ये सच्चा ध्यान है या झूठा, ये ध्यान का ढोंग कर रहा है, ये जान करके कि मुझे राजा की क्यों सेवा करनी पड़े, मुझे राजा से क्यों बातचीत करनी पड़े, और दिखाने के लिए कि राजा देखे कि मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूं, है ना। तो ये चीज जो है मतलब बहुत, तो ढोंग बहुत है ना, और राजा का कर्तव्य है कि ऐसे ढोंगियों को दंड दे, जरूरी है दंड देना। तो ढोंग तो अभी बहुत कुछ, पाखंड बहुत कुछ अभी फैला हुआ है, वृंदावन भी जाते हैं तो बहुत से पुजारी लोग इस तरह के हैं, दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा में भी छोटे छोटे बच्चे भी जो ना हमने देखा कि एक बच्ची भी जो ना जब देखा कि भक्त लोग आ रहे हैं, इस्कॉन के भक्त आ रहे हैं परिक्रमा में, तो रास्ते में वो बैठ गई ऐसे और देखती है आंखें खोल के कि लोग देख रहे हैं मुझे, है ना, पैसा देंगे, पैसा चढ़ाएंगे, बड़े महात्मा हैं, साधु हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज का ही कर्तव्य था ये जानना, इसलिए कोई बड़ा उन्होंने अपराध नहीं किया। और ये मरा हुआ सर्प गले में डाल करके ये देखना चाहा कि अगर जो है ना झूठा ध्यान है तो फिर उछलेंगे महाराज जी, अरे बाप रे क्या हो गया, है कि नहीं, इसे उछलेंगे, तो ये बड़ा अपराध नहीं था। तो कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जिनमें व्यक्ति अपराध नहीं करना चाहता और अपराध हो जाता है ना, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है और परीक्षित जो है ना अपराध नहीं करना चाहते लेकिन अपराध हो गया। रूपा जी बताते हैं तात्पर्य में ये कलयुग का प्रभाव नहीं था परीक्षित के, कुछ लोगों की व्याख्या है कि परीक्षित के सिर में सोने का मुकुट था तो वो कलयुग आ गया इसलिए ऐसा हुआ, बाद में सोने का मुकुट उतारा अपने महल में तो फिर उनको पता चला कि मैंने बहुत अपराध किया। नहीं, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं था। जब उनसे इतना डर रहा है कलयुग है कि इतना दूर रहता है तो कैसे उनके ऊपर कलयुग का प्रभाव। लेकिन उस बच्चे पर कलयुग का प्रभाव था। किस बच्चे पर? हाँ, समीक मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी, उस पर कलयुग का प्रभाव पड़ा जिससे कि उसने राजा को श्राप दिया और मरने का श्राप। अगर कुछ तो अगर अपराध मान लो कि कुछ हो गया तो कुछ दंड दे सकते, थोड़ा सा दे सकते थे, है कि नहीं, लेकिन सीधा मृत्यु का श्राप दे दिया, है ना। तो ये जो ना सर्प के समान जो ना ये व्यवहार था उस बच्चे का, ये सर्प है, थोड़ा सा अपराध हो जाए मतलब थोड़ा सा पैर लग जाए, छू जाए, और वो काट लेता है, मार डालता है किसी व्यक्ति को। तो सर्प की तरह समान जो ईर्ष्या है उस ब्राह्मण के पुत्र में आई। तो कलयुग का जो सबसे पहला प्रभाव है प्रभुपाद जी बताते हैं उस ब्राह्मण के पुत्र पर था जैसे साप दिया। और समीक मुनि ने जो है मतलब बहुत दुख माना इस बात का। एक तो दुख इस बात का कि राजा जो है ना निर्दोष था, वो आश्रम में आया, उसको पानी मिलना चाहिए, उसको स्वागत सम्मान मिलना चाहिए, और उसको जो ना हमारी तपस्या हमारे धर्म का छठा अंश उसको मिलता है राजा को। राजा अपने प्रजा के जितने पुण्य है उनका छठा अंश वो लेता है, और उसके राज्य में सब लोग पुण्य कर रहे हैं, अधर्म है नहीं उसके राज्य में। तो इतने महान राजा को जो है ना हमारे पुत्र ने श्राप दिया, इस बात का उनको बहुत दुख था। और फिर भी परीक्षित महाराज को जब पता चला कि नहीं वो सचमुच ध्यान में थे, तो उन्होंने उसको अपना बहुत बड़ा अपराध माना। लेकिन ये परीक्षित जो मान रहे अपना बहुत बड़ा अपराध, ये उनकी विनम्रता है, ये नहीं हम सोचेंगे नहीं नहीं वो बहुत बड़ा अपराध था। परीक्षित मान रहे हैं अपने को बहुत बड़ा अपराधी, वो उनकी विनम्रता है। युधिष्ठिर महाराज अपने को बहुत बड़ा अपराधी मान रहे हैं कि हमारे कारण पूरे कुल का नाश हुआ, है ना, उनकी विनम्रता है ना। तो ये चीज नहीं है कि मतलब अब वो मान रहे हैं अपने को बड़ा अपराधी तो हम भी मान रहे कि नहीं बहुत बड़ा अपराध किया। हाँ, आप लोग इनका प्रश्न है कि परीक्षित महाराज के पास शक्ति थी, योग्यता थी दंड देने की, उनका चरित्र शुद्ध था इसलिए वो दंड दे सकते थे। आजकल के लोग तो है ही, हाँ, इसलिए कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, तो इसलिए जो है ना वो कृपा करते हैं, है ना। आजकल के जो लोग हैं राजा लोग हैं वो खुद ही चोर हैं, इसलिए चोरों को दंड नहीं देते हैं। ये तो है ही है, और इसी में अच्छे अपने को अच्छा कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, तो कि हम चोरों को आश्रय दे रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा है कि जब तक जो है ना भगवान की भक्ति नहीं होती तब तक कोई अच्छा गुण हो नहीं सकता है। तो प्रभुपाद ने सिकंदर के बारे में भी घटना बताई कि सिकंदर ने एक चोर को पकड़ा और उससे पूछा कि तुमको क्या दंड देना चाहिए, क्या दंड दिया जाए। तो वो क्या बोला, वो बोला कि मुझे दंड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप खुद चोर हो, आप अंतर यही है कि आप बड़े चोर हो मैं छोटा चोर हूं। तो सिकंदर ने स्वीकार किया, ठीक है, उसको छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, इस तरह से राजा लोग अच्छे हैं कि चोरों को आश्रय देते हैं, वो खुद चोर हैं इसलिए चोरों को भी आश्रय देते हैं, है ना। और इसी को अच्छा गुण माना जाता है कि भाई हम अच्छा कर रहे हैं, हम भलाई कर रहे हैं, हम बहुत भलाई कर रहे हैं, सबको आश्रय दे रहे, सबको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब तक भगवान की भक्ति ना हो तब तक कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता, आप समझ रहे हैं, कोई अच्छा गुण नहीं है। और कोई आपका प्रश्न? हाँ, ऋषि महाराज ने जो हरकतें करी कि ब्राह्मण गले में मना हुआ सांप डाला, तो ये तो ठीक नहीं है, मतलब शिक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। वही तो मैं चर्चा कर रहा हूं, आपने सुना नहीं, समस्या ये है कि आपने सुना नहीं, वही तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि राजा का ही कर्तव्य था, राजा का ही कर्तव्य था कि ये देखे कि कौन नकली है, नकली ध्यान कर रहा है, कौन असली ध्यान कर रहा है, ये राजा का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य के रूप में राजा ने परीक्षा लेनी चाहा, लेकिन कभी कभी हम कुछ कर्तव्य करते हैं और उसमें कुछ अपराध हो जाता है, अनजान में अपराध हो जाता है, तो ये बड़ा अपराध नहीं था और समीक मुनि ने अपराध नहीं माना। आप अच्छी तरह सुनो, समीक मुनि जिनके गले में मरा हुआ सांप डाला, उन्होंने बताया कि हमने अपराध किया है बड़ा, राजा का तो कोई अपराध नहीं है। समीक मुनि स्वयं कहते हैं राजा का कोई अपराध नहीं है, हमने अपराध किया है कि उसको हमने स्वागत नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, इतना बड़ा राजा है और हमारी कुटिया में आया, हम कितने भाग्यशाली जो कि सब संपूर्ण पृथ्वी में जो है ना धर्म को फैला रहा है, अधर्म का जो है अधर्म के ऊपर शासन कर रहा है, अधर्म को दबा रहा है, इतने बड़े राजा का हमने सम्मान नहीं किया, जबकि हम हमारा बहुत सौभाग्य था कि हम उसकी सेवा करते, हम उसको पानी देते, उसको बिठाते। सोचो एक इतने बड़े राजा और उनको जो ना कोई बोल नहीं रहा है, वो किसी घर में आए और उसका कोई स्वागत ना हो, सोचो उसकी कैसी हालत होगी, कैसा लगेगा उसको, आप सोचो। इतना महान राजा, पूरी पृथ्वी का शासक है और किसी के घर में आए और उसको कोई पूछे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, बातचीत ना करे, कैसा लगेगा सोचो। सब मैं बोल चुका हूं, सब कुछ मैं बोल चुका हूं, मैं सब कुछ बोल चुका हूं। आपका प्रश्न प्रभु जी बता रहे हैं, धन्यवाद। तो इनका कहना है कि ये भगवान की इच्छा थी कि परीक्षित महाराज ने ऐसा किया और वो जो है ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने मारा था उससे भी वो जब बच गए और सहन किया, तो क्या प्यास को नहीं सहन कर सकते थे? हाँ, प्यास को सहन कर सकते थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्यास को सहन नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने गुस्से के कारण ऐसा किया, लेकिन मेरा कहना है कि इसमें गुस्सा नहीं था उनका जरा भी, ये प्यास के कारण नहीं था। मेरा ये कहना है कि प्यास के कारण नहीं था, हालांकि प्यासे थे, उन्होंने पानी मांगा, प्यास के कारण नहीं था। क्या कारण था? परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षा करना जरूरी है। ढोंगी तो नहीं है, और ढोंगी होते हैं तो ध्यान तो टूट जाता है। अक्सर भगवान कहते हैं कि ध्यान करो बिल्कुल एकांत में करो, जहां बिल्कुल आवाज ना हो, भगवान बता ध्यान का ये स्थान है, और जहां कोई व्यक्ति आता है आवाज करता है तो ध्यान टूट जाता है। तो वो ध्यान टूटने की स्थिति थी, लेकिन ध्यान नहीं टूटा वो दूसरी बात। लेकिन ज्यादातर इस तरह से लोग ढोंग करते हैं कि हमें क्यों हम सत्कार करें, क्यों सम्मान करें, कोई अतिथि है उसका भी सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते, कितने वो पापी हैं। आपके पास कोई आए मिलने के लिए, आप उसका सम्मान नहीं करते, आप उससे कुछ बात नहीं करते, मीठी बात नहीं करते, उसको बैठाते नहीं, बहुत अपराध है। परीक्षित महाराज शास्त्र के अनुसार देखना चाहते थे कि कौन व्यक्ति सही है, कौन व्यक्ति गलत है, और उनकी देखो कितनी बुद्धि, कि उन्होंने इस तरह से परीक्षा ली जिससे कि मतलब वैसे कुछ नुकसान भी ना हो और पता भी चल जाए कि कौन सही है कौन गलत है। उनकी ऐसी बुद्धि देखो, राजा की एक बुद्धि है कि ऐसा काम किया जिससे कि मतलब वैसे कुछ नुकसान होने वाला नहीं था, लेकिन अगर ढोंगी है तो वो चलेगा, अरे बाप रे वो सांप देखेगा, सांप है ना, अगर दिखा रहा है तो चलेगा वो, है ना, भागेगा, सांप सांप है ना। लेकिन सचमुच समीक मुनि जो है ना ध्यान में थे और ध्यान नहीं टूटा था तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये घटना सामान्य नहीं है, सामान्य घटना तो यही है कि कोई व्यक्ति हो कुछ बात करता है तो उसका ध्यान टूट जाएगा, लेकिन ये कुछ विशेष घटना थी जो भगवान की इच्छा से हुई। तो मैं नहीं कहता कि परीक्षित महाराज प्यास के कारण उन्होंने ये गलत काम किया और वो अपने जो है होश में नहीं थे, गुस्से में आ गए, ईर्ष्या में आ गए, उन्होंने ऐसा काम किया, मैं नहीं कहता ऐसा। उनकी पूर्ण इंद्रियां वश में थी, सब कुछ उनके नियंत्रण में था, उनका दिमाग ठीक था, सब कुछ था, और उन्होंने जो है ना जो काम किया ये परीक्षा के लिए किया। और कोई प्रश्न आपका है? इनका प्रश्न है कि जब सबसे सब कुछ पहले से निश्चित था तो श्रृंगी ऋषि के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, प्रभुपाद जी ये भी लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि के कारण जो साप मिला श्रृंगी ऋषि के द्वारा, जो साप दिलवाया भगवान ने, तो ये भी भगवान की ऐसी योजना थी कि इस बालक को क्षमा भी कर दिया जाए। क्योंकि बच्चे से साप मिला तो उसको फिर क्षमा भी कर दिया गया कि एक बच्चा है, अबोध बालक है। श्रमिक मुनि फिर जो ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे इस बच्चे को क्षमा करो, ये जो ना अबोध है, अनुभवी नहीं है, इसलिए उसने साप दिया। और कोई प्रश्न किसी का? धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगद्गुरु श्री राम प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौरनता इसी तरह लक्ष्मण हनुमान की जय।
Yeah.